Itu bro. Jadi hari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Janwala Bhagiri Varadhari Gopi Janavalla Bhagiri Varadhari
Gopi Janavalla Bhagiri Varadhari
Jaya Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Janavallabha Giri Varadhari Jaya Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Janavallabha Giri Varadhari Jaya Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Giri Dhari Radha Giri Dhari Radhe
Jaya Radha Giri Dhari Radha
जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 हनुमताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि प्रेमानंदे जय ओम नित्य लीला प्रवेश विष्णुपाद परिवार जिकाचार्य अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय ओम नित्य लीला प्रवेश विष्णुपाद परिवार जिकाचार्य अष्टोत्तर शत त्रिदंडी सन्यासी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय श्री लनामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की जय जय श्री गौर निताई जय जय श्री श्री राधा दामोदर भगवान की दामोदर मास की दामोदर लीला की व्रज भूमि वृंदावन धाम की जय कार्तिक मास की कार्तिक मास व्रत की सब वेद भक्त वृंद की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की निताई गौर हरि प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण। तो रविवार के इस प्रीति भोज उत्सव में आए हुए सभी भक्तों का राधा गिरधारी मंदिर में स्वागत है। बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत परम पवित्र समय वर्तमान में चल रहा है। चतुर्मास का अंतिम मास कार्तिक मास, जिसको शास्त्र बहुत ही परम पवित्र मास बताते हैं, और उसमें भी इसको दामोदर मास भी कहते हैं। जिस मास में भगवान ने अनेक दिव्य लीला संपन्न की, जिसमें दामोदर लीला प्रमुख है, और इस मास में जो भी दामोदर मास व्रत का पालन करता है, भगवान दामोदर को दीप दिखाता है, दामोदर अष्टकम का पाठ करते हैं, और जो ज्यादा से ज्यादा अपना साधन करते हैं, उन्हें अनेक गुना फल इस मास में प्राप्त होता है। ये भगवान के और निकट जाते हैं। तो समय का बहुत बड़ा प्रभाव होता है ना। आज प्रातः ही एक भक्त से हम चर्चा कर रहे थे, तो जैसे मैंने बताया कि अभी दिवाली के बाद कृषक लोग होते हैं जो भूमि में गेहूं बोते हैं, तो अभी दिवाली के बाद का जो महीना है दिसंबर जनवरी, उसमें जो गेहूं बोया जाता है उसमें एक दाना डालते हैं तो उसके 50-100 दाने बनकर निकलते हैं। उसी गेहूं को अगर होली के बाद बोया जाए तो एक दाना का 2 या 3 दाना ही निकलेगा। तो समय का प्रभाव होता है। इस प्रकार भक्ति में भी अगर हम वर्तमान समय में दामोदर मास में जितना ज्यादा जप, जितना ज्यादा भगवान की सेवा, भगवान का कथा कीर्तन श्रवण करते हैं तो उसका अनेक गुना फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इस मास में ज्यादा से ज्यादा हमको भगवान के सेवा में जुड़ना चाहिए, विशेषकर भक्तों का संग में रहकर। भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तों का संग का इतना प्रभाव होता है, संग का इतना प्रभाव है कि जैसे समुद्र में लकड़ी की नाव को रखते हैं तो वो लकड़ी की नाव तैरती है, तो उसके संग में जितने लोहे के खीले या पट्टियां लोहे की मारी होती है वो भी तैरती है। अब उस नाव से एक आध लोहे की पट्टी को या लोहे के खीले को बाहर निकाल कर रखिए जल में तो वो डूब जाएगा, लेकिन नाव के संग में रहता है तो वो भी तैरता है। ये संग का प्रभाव होता है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति अगर भगवान के भक्तों के संग में किसी भी हेतु से रहता है तो निश्चित उसको उसका लाभ मिलता है, वो भी तैर जाएगा, डूबेगा नहीं। तो भगवान के भक्तों के संग में रहकर ये सारे भक्ति के साधनों को संपन्न करना चाहिए, हो सके तो धामवास भी करना चाहिए। जैसे वर्तमान समय में कई भक्त धाम में चले गए हैं, जो नहीं गए हैं उनके हमारे लिए ये भी धाम है। तो ज्यादा से ज्यादा आना, दीपदान करना, सेवा करना, ये करना चाहिए। तो ये हमारा बहुत बड़ा मनुष्य जीवन का सौभाग्य है। इसे कार्तिक मास व्रत में ऐसे एक बहुत लंबी कथा है, लेकिन मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। भगवान की जो पटरानी है सत्यभामा जी ने भगवान से प्रश्न किया था कि मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा व्रत या कौन सी तपस्या की जिसके कारण मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेकर भी आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं इनके कौन सा व्रत पालन किया तो बताते हैं कि तुमने अपने पूर्व जन्म में 2 व्रतों का निष्ठा पूर्वक पालन किया, एक एकादशी व्रत और एक कार्तिक मास का व्रत, और दोनों व्रत तुम्हें हमारे प्रेम को प्राप्त करने के लिए किया, अतः तुम्हें हमारा प्रियतमा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार, हालांकि ये कथा बहुत लंबी है, पद्म पुराण में बताई गई है। पद्म पुराण में भगवान शिव भी कार्तिकेय को कार्तिक मास की महिमा बताते हैं। इसमें भगवान शिव बताते हैं कि कार्तिक मास में जो भूमि पर शयन करता है वो एक अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त कर लेता है। हालांकि अनेक व्रत में कार्तिक मास व्रत पालन करने की और भी अनेक विधियां हैं, जैसे कार्तिक मास में उड़द की दाल नहीं खाना, भगवान को दीप दान करना, धाम में वास करना, कांसे के बर्तन में नहीं खाना, मधु का सेवन नहीं करना, इस प्रकार की अनेक कुछ व्रत हैं। तो उसका पालन यथा संभव जितना भी है हमको करना चाहिए, जिससे हमको कार्तिक मास व्रत का फल मिलता है। हमारा फल यही कि हमको कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाए। तो आइए, कृष्ण को प्रेम करने से क्या होता है उस लीला का आज श्रवण करते हैं। तो बहुत ही मधुर लीला, दामोदर लीला, जिसमें भगवान ने यही बताया है कि हमसे जो प्रेम करते हैं वो हमको वशीभूत कर लेते हैं। वैसे भगवान जो योगी हैं या ज्ञानी हैं या वेद का अनुष्ठान करने वाले भक्त हैं, वे भी भगवान को प्रसन्न करते हैं। लेकिन इस दामोदर लीला में भगवान यह बताते हैं कि भले ज्ञानी, योगी या वेदिक अनुष्ठान करने वाले मुझे प्रसन्न करते हैं, लेकिन मुझको वशीभूत नहीं कर पाते। लेकिन हमारे जो प्रेमी भक्त होते हैं, जो हमारे अनन्य शुद्ध भक्ति अर्थात प्रेम भक्ति, जो हमारे प्रेमी भक्त होते हैं, वे हमको वश में कर लेते हैं। ये इस लीला में भगवान दिखाते हैं। तो इसी के अनुरूप इस लीला जो संपन्न हुई, तो उस लीला को संपन्न जब भगवान कृष्ण बंद गए माता यशोदा के द्वारा, तो लगा सुखदेव गोस्वामी को कि महाराज परीक्षित को शायद ये मन में हो कि अरे कृष्ण बंद गए, कृष्ण को बांध दिया, कृष्ण को बांध दिया। तो उनके इस मन के संशय को समाधान करने के लिए सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक कह रहे हैं, जो आज का श्लोक है, तो आप सभी उच्चारण कीजिए। एवं संदर्शिता अंग हरिणाम भ्रत्यवश्यता स्ववशेनामपि कृष्णेन यस्येदं स ईश्वरं वसे। एवं संदर्शिता अंग हरिणा भ्रत्यवश्यता स्ववशेनामपि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वशे। एवं स्वदर्शिता अंग हरिणा भ्रत्यवश्यता स्ववशेनामपि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वशे। एक प्रभु जी और एक माता जी, एवं संदर्शिता अंग हरिणाम भ्रत्यवश्यता कृष्णेन माताजी। हरिणाम भ्रत्यवश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन एवं इस प्रकार संदर्शिता प्रदर्शित किया ही निसंदेह अंग हे महाराज परीक्षित हरिणा भगवान के द्वारा भ्रत्यवश्यता अपने सेवक या भक्त की अधीनता स्वीकार करने का गुण स्ववशेना जो केवल अपने वश में रहे अपि निसंदेह कृष्णेना कृष्ण द्वारा यश जिसके इदम संपूर्ण ब्रह्मांड स ईश्वर शिव तथा ब्रह्मा जैसे शक्तिशाली देवताओं सहित वशे वश में। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा। हे महाराज परीक्षित, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा तथा भगवान इंद्र जैसे महान एवं उच्च देवताओं समेत ये संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के वश में है, फिर भी भगवान का एक दिव्य गुण यह है कि वे अपने भक्तों के वश में रहते हैं। यही बात इस लीला में कृष्ण द्वारा दिखलाई गई है। तात्पर्य, कृष्ण की इस लीला को समझ पाना दुष्कर है, ये दामोदर लीला को, किंतु भक्तगण इसे समझ सकते हैं। इसलिए कहा गया है, दर्शयस्त द्विविदाम लोक आत्मनो भक्त वश्यताम। भगवान अपने भक्तों के वश में होने का गुण प्रदर्शित करते हैं। ब्रह्म संहिता में बताया गया है, एक पयसो रचयितुम जगदंड कोटि यत्स शक्ति अस्ति जगदंचया यदंतः अंडा अंतरस्त परमाणु चयांतरस्तम गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। अपने एक अंश परमात्मा से भगवान असंख्य ब्रह्मांडों एवं उनके देवताओं को नियंत्रित करते हैं, फिर भी वे अपने भक्त द्वारा नियंत्रित होने के लिए राजी हो जाते हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि भगवान मन से भी अधिक वेग से दौड़ सकते हैं, किंतु यहां हम देखते हैं कि अपनी माता द्वारा पकड़े जाने से बचने की इच्छा रखते हुए भी कृष्ण पराजित हुए। माता यशोदा द्वारा पकड़ लिए गए लक्ष्मी सहस्रमानम, कृष्ण की सेवा लाखों लक्ष्मियां करती हैं, फिर भी वे मक्खन की चोरी इस तरह करते हैं मानो वे दरिद्र हो। यद्यपि सारे जीवों का नियंत्रण यमराज भी कृष्ण से भयभीत रहता है। इन विरोधाभासों को अभक्त नहीं समझ सकता, किंतु भक्त समझ सकते हैं कि कृष्ण की अनन्य भक्ति इतनी बलवान है, यह इतनी बलवान है कि कृष्ण को एक शुद्ध भक्त द्वारा नियंत्रण में किया जा सकता है। इस भृत्यवश्यता का अर्थ यह नहीं कि वे अपने दास के वश में हैं, प्रत्युत वे दास के शुद्ध प्रेम के वश में हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और अर्जुन ने उन्हें आदेश दिया। क्या आदेश दिया? सेनयो उभयो मध्य रथम अस्थपाय मे अच्युत, हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, अर्जुन ने आदेश दिया। अतः मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करो। कृष्ण ने तुरंत इस आदेश का पालन किया। अतएव यह तर्क दिया जा सकता है कि कृष्ण भी सदैव पूर्ण स्वतंत्र नहीं रहते, किंतु यह तो मनुष्य का निजी अज्ञान है। कृष्ण पूर्ण स्वतंत्र हैं। जब वे अपने भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं तो यह आनंद चिन्मय रस का प्रदर्शन होता है जो अपने दिव्य आनंद को बढ़ाने वाला है। हर व्यक्ति कृष्ण की पूजा भगवान के रूप में करता है, अतएव कभी कभी वे किसी अन्य भक्त द्वारा नियंत्रित होने की इच्छा करते हैं। ऐसा नियंत्रक एक शुद्ध भक्त के अतिरिक्त भला अन्य कोई कैसे हो सकता है? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोमीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप परायं ददाति सौपदान्तिकम्। नमोम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर।
Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama
Hare Hare Krishna. तो जैसा प्रथम में हमने बताया कि ये श्लोक महाराज परीक्षित को एक सांत्वना देने के लिए कहा गया है। ये लीला इस प्रकार है कि कृष्ण ने गोकुल में आकर पूतना का वध किया, चकटासुर का वध किया, तृणावत का उद्धार किया, इस प्रकार इनका उद्धार किया। ये बिल्कुल अभी बाल अवस्था में थे तभी। अब कृष्ण धीरे धीरे बड़े होने लगे और अपने बाल लीलाओं को प्रकाशित करने लगे। पहले वो धीरे धीरे ऐसे नंद जी के आंगन में रेंगने लगे, पेट के बल जैसे बच्चा चलता है ऐसे चलने लगे। ऐसे चलते थे तो वो आंगन से बाहर आ जाते थे, कहीं गाय का गोबर पड़ा है, गाय का मूत्र पड़ा है, वो ऐसा कीचड़ भी उनके शरीर में लग जाता था, लेकिन वो रेंगते थे। वो उससे बचाकर नहीं चल सकते क्योंकि अभी रेंग रहे हैं, परफेक्ट लीला कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी मैं भगवान हूं तो उसको बचाकर कूद कर चला जाऊं, वो नहीं। अब रेंगने से अब धीरे धीरे बच्चा जैसे क्रम सब बड़ा होता है तो खड़ा होना सीखता है ना। तो आजकल हम देखते हैं कि बच्चा कैसे खड़ा होना सीखता है या चलना सीखता है, तो ऐसा एक वो गोल गोल इंस्ट्रूमेंट आता है ना रेंग का, और बीच में उसको खड़ा करते हैं, वो पकड़ लेता है और फिर ऐसा पहिया होता है तो वो चलता है। उस हाँ क्या कहते हैं ओ जो वॉकर, वॉकर मतलब चलने का सिखाने वाला। तो ऐसे बच्चा खड़ा होकर चलना सीखता है, लेकिन ये तो कृष्ण के समय में नहीं था। तो कृष्ण कैसे, तो कृष्ण क्या करते थे खड़ा होकर चलना सीखने के लिए, गाय के बछड़ों का पूंछ पकड़ लेते थे। ऐसा बैठे बैठे पूंछ पकड़ा तो जैसे पूंछ पकड़ते थे और पूंछ पकड़कर खड़ा हो जाते थे, तो पूंछ पकड़ के खड़ा हो जाते थे तो वो बछड़ा भागता था, तो ये भी पीछे पीछे ऐसा और कड़ाई से पकड़ लेते, कहीं छूट गया तो मैं गिर जाऊंगा, और कड़ाई से पकड़ते, जितना कड़ाई से पकड़ते तो बछड़ा और कड़ाई से भागता था। ऐसा लोटते लुटकते, लेकिन उसको पकड़े रखा है तो वो ऐसे पांव से खड़ा होना और ऐसा चलना सीखते थे। वो उनके लिए वॉरकर था वो बछड़ा गाय का है। तो इस प्रकार, और जिस इस प्रकार घसीटे जाकर, कभी कभी पीछे घसीटे जा रहे हैं, अभी नए नए हैं तो पूरा नहीं खड़ा हो सकते हैं, तो घसीटा जा रहे हैं, फिर घसीट के धीरे धीरे खड़ा होते थे, फिर दौड़ते थे गाय के बछड़े का पूंछ पकड़कर। तो इस प्रकार की ये लीला है वहाँ की गोपियाँ देखती थी, माता यशोदा और अन्य गोपियाँ भी देखती थी, और देखकर उनको अति आनंद होता था। इस प्रकार करते करते अब पूरा खड़ा होना सीख लिए और भागना भी सीख लिए, अब पूरा हो गया खड़ा होकर, अब बिना गाय की पूंछ पकड़े खड़ा होकर भाग सकते हैं। जब इस अवस्था में आ गए तो अब उन्होंने अपना नाटक चालू किया। अब खड़ा होकर भाग सकते हैं तो आजू बाजू के जो पड़ोस की गोपियां हैं उनके घर में जाना, उनके मटकों को फोड़ देना, दही और मक्खन के मटकों को फोड़ना, उसमें से दही चुराना, दही बंदरों को खिला देना, कौओं को खिला देना, इधर उधर बिखेर देना, अपने गोप सखाओं को खिला देना, और इस प्रकार की लीला, इस प्रकार अपना नटखट लीला बताने लगे। तो जब इस प्रकार आसपास के पड़ोस में करने लगे तो आसपास की गोपियां शिकायत लेकर यशोदा के पास आने लगी और यशोदा से कहने लगी, यशोदा यशोदा तुम्हारे लाला को संभालो, ये हमारे घर में आता है, हमारे दही और मक्खन की भांडियों को फोड़ देता है, मटकों को फोड़ देता है, मक्खन बिखेर देता है, कौओं को खिला देता है, बंदरों को खिला देता है, इस प्रकार का हमारे घर में आकर उदंड मचाता है, संभालो तुम अपने लाला को। तो माता यशोदा उनसे कहती कि जब मेरा लाला आकर तुम्हारे घर में इस प्रकार उत्पात करता है तो तुम रोक नहीं सकती क्या? वो तो बच्चा है, तुम उसको क्यों घर में प्रवेश करने देती हो, बाहर से ही रोक लो। अरे यशोदा क्या बताएं, ये हमारे घर में प्रवेश करने के पहले हमारी दहलियों में जाता है और वहां जो छोटे छोटे बछड़े हैं उनको खोल देता है, तो गाय दोहने के पहले ही सारे बछड़े खुलकर गाय को दूध पीने चले जाते हैं, अभी गाय दोहना बाकी है। तो जब बछड़ों को छोड़ देता है तो बछड़े गायों को दूध पीने के लिए चले, तो हम घर से बाहर निकलती हैं ऊंटों को पकड़ने के लिए, बछड़ों को पीछे दौड़ती हैं, उनको पकड़ती हैं, बांधती हैं, तब तक ये हमारे घर में घुस जाता है और घर में घुसकर अपनी करतूत करने लगता है। तो माता यशोदा ने कहा तो फिर ऐसा करो ना, ये तो बहुत छोटा है, अपने जो दही और मक्खन के जो छीके हैं, मटके हैं, उनको ऊपर बांध दिया करो, छीके में रखे ऐसा ऊपर बांध दो। बोला ऊपर भी बांध कर देख लिया, जब हम ऊपर बांधते हैं तो ये अंदर प्रवेश करता है और कोई पीड़े या उखूल उस पर चढ़ जाता है, और उस पर चढ़कर भी अगर हाथ नहीं पहुंचता है तो हाथ में लकड़ी छोटी लेता है और छोटी से उसमें छेद कर देता है, और फिर ऊपर से वो मक्खन गिरने लगता है, तो फिर कौओं को और बंदरों को खिलाता है। तो माता यशोदा ने अंतिम सलाह दी, ऐसा करो तुम अपने दही और मक्खन को किसी कोने में, अंधेरा हो ना दिखे उधर रखा करो। माता यशोदा से शिकायत कर रही है, कृष्णा बाजू में बैठे हैं आराम, ऐसा है जैसे कोई मैं कुछ नहीं किया, ये सब झूठी शिकायत करती, ऐसा मूड बनाकर बैठे हैं बाजू में, तो ऐसा अंधेरे में रखो, इसको दिखे ही नहीं। कभी कभी हम छुपा के रखते हैं ना अंधेरे में, अरे अंधेरे में छुपा के रखकर भी देख लिया, तुम जो कृष्ण और बलराम को इतना श्रृंगार करती हो, हीरे और मोतियों और माणिक का जो हार पहनाती हो, ये पहनकर जब लल्ला हमारे घर में आता है तो घर में जैसे ट्यूबलाइट जल गया इतना प्रकाश हो जाता है, इसके गहनों से लाइट निकलता है, फिर अंधेरा कहां रहे, वो तो दिख जाता है उसको वहां। माता यशोदा ने कहा तो ठीक है मैं इसको सिंगार करना बंद कर, नहीं 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 ऐसा नहीं, तुम जब सिंगार करती है तो बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन ये इतनी नटखट करता है, हमारे घर में आकर उदंड मचाता है, मक्खन और ऐसा करता है, और तुमको लगता है कि ये सीधा है, अभी सीधा साधा भोला बनकर बैठा है, ये ऐसा नहीं है, बहुत शैतानियां करता है हमारे घर पर आकर। इस प्रकार की शिकायत आए दिन आने लगी, बहुत बहुत गोपियां शिकायत करने लगी हैं। यशोदा ने कहा नहीं, हमारे घर में बहुत दही मक्खन है, तुम रोज झूठी शिकायत करती हो, कभी सुनती थी कभी ऐसा गोपियों को भी, क्यों नहीं करता है हमारा लल्ला ऐसा? तो एक गोपी ने कहा ठीक है मैं अभी रंगे हाथों पकड़कर यहां लेकर आऊंगी, तब तो मानोगी ना। बोला ठीक है। एक दिन गोपी छुप गई, अब कृष्ण मक्खन चुरा रहे हैं, हाथ में मक्खन गया लौंदा, थोड़ा मुंह पे भी है, खाया है, उसी अवस्था में गोपी ने पकड़ लिया। अब कैसे यशोदा मना करेगी, रंगे हाथ बाय प्रूफ, हाथ में भी मक्खन है, हाथ में मक्खन चिपका हुआ है, मुंह पे चिपका हुआ है, ऐसा पकड़ लिया, और उसका सब जो है गोप सखा है वो भी साथ में, चल यशोदा रोज हमको झूठा कहती है, मैं झूठी हूं, चल अभी दिखाती हूं कि देख। तो पकड़ा, अंगुली पकड़कर ले जा रही है गोपी, और उसके सारे शिष्य साथ में हैं, गोप सखा पीछे पीछे चलते हैं, बच्चों का आदत होता है एक को पकड़े वो सब पीछे हल्ला करते करते चलते। तो गोपी अंगुली पकड़कर ले जा रही है तो सामने से नंद महाराज आ रहे हैं, तो नंद महाराज को देखा तो तुरंत उसने हाथ छुड़ा के अपने दोनों हाथों से ऐसा घूंघट खींचने के लिए कृष्ण से हाथ छुड़ाया और घूंघट तानिया। वो जो नंद महाराज मुखिया हैं बड़े गांवों में है ना, आज भी घूंघट तान देते हैं कोई बड़ा व्यक्ति होता है तो, अब तो ये हैं? और मुंबई वाले तो ये घूंघट की बात छोड़ो, अपना केस भी नहीं ढकते हैं ठीक से, बहुत भद्र व्यवहार होने लगा है। कम से कम भक्तों को ध्यान रखना चाहिए, कौन सा वस्त्र पहनना, माताओं को कैसे ओढ़ना। तो इस प्रकार जब उस गोपी ने अपना घूंघट निकालने के लिए कृष्ण की अंगुली छोड़कर ऐसा घंघट खींचा, तो कृष्ण ने क्या किया, उसका लड़का ही उसके पीछे चल रहा था, उसकी अंगुली उसके हाथ में दे दी, फिर ऐसा पकड़ा और कृष्ण वहां से भाग गए। तो इसने तो घूंघट निकाला है और वो तो जा रही है बड़ी। आज रोज यशोदा हमको झूठा कहती है, आज कैसे कहेगी आज तो। और कृष्ण पीछे से भाग कर शॉर्टकट से घर गए, मुंह हाथ बात धो लिया और बस घर में ही है। और वो गोपी जाती, यशोदा यशोदा बाहर आओ बाहर आओ। तो कृष्ण भी हैं लेकिन पीछे है, मैया के पीछे छिपे छिपे बाहर आए। यशोदा बाहर, बोला क्या है, क्यों इतनी चिल्ला रही है जोर से, तू रोज कहती है हम झूठे हैं, तेरा लल्ला मक्खन नहीं खाता है, देख मैं आज रंगे हाथ पकड़ के लाई। तो यशोदा ने कहा पहले तू देख किसको पकड़ कर लाई है। तो उसने देखा, अरे ये तो मेरा ही लड़का है। तो उधर कृष्ण यशोदा से पीछे से ऐसा है, हमको कोई नहीं पकड़ सकता। वो गोपी बेचारे बहुत नटखट है, उसको कैसे पकड़ा जाए। तो इस प्रकार की लीलाएं जब भगवान करने लगे, लेकिन माता यशोदा को अब संशय हो गया कि रोज रोज शिकायत आती, निश्चित कुछ बात तो है, ये क्यों दूसरों के घर का मक्खन खाता है, क्या मेरे यहां मक्खन अच्छा नहीं बनता। ये सोचकर दिवाली के दिन ही जो नंद महाराज थे, ये तो मुखिया थे, वहां के राजा थे नंद वृंदावन के, इनके अनेक दास दासियां थी, तो दूसरी नौकरानियों को दूसरे कामों में लगा दिया। आज मैं स्वयं दही हाँ, एक दाह गृह दासी सु स्वयं यशोदा स्वयं मंथन, एक दिन अपनी गृह दासियों को दूसरे कामों में लगाकर स्वयं भोर में उठकर माता यशोदा स्वयं अपने लल्ला के लिए मक्खन निकालने का प्रयास करने लगी। तो उसने मटका में जो दही लेते हैं, दही लेकर मथनी डाली और मथने लगी भोर में। ये दही मंथन जो होता है भोर में होता है बहुत, तो मथने लगी और मथते समय सुखदेव गोस्वामी उनका पूरा वर्णन करते हैं। यहाँ पीले रंग की साड़ी पहनी है, अनेक मालती के फूल उनके केश में जूड़े में बांधे हुए हैं, कमर में कमरधनी लगाया हुआ है और हाथों में कंगन और चूड़ियां हैं। और जब वो मथनी उस मटकी में चलने लगी झररर मरर झररर मरर, तो ऐसा लगने लगा जैसे मृदंग बज रहा है, धा टिक धा टिक धा टिक, तो ऐसा मृदंग जैसा बजने लगा। और जो हाथों में चूड़ियां पहनी हुई और इस प्रकार दही बिलो रही है, तो वो चूड़ियां जो है वे ऐसे करताल जैसा काम करने लगी है, मृदंग बज रहा है करताल बज रहा है। और माता यशोदा अब कृष्ण की बाल लीलाओं का गान कीर्तन कर रही है और ऐसे करते हुए दही मथ रही। वहां प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इससे प्रत्येक भक्त को शिक्षा लेना चाहिए कि अपने घर के कार्य करते हुए भी कृष्ण की लीलाओं का या कृष्ण का कीर्तन करते रहना चाहिए। हाथ से काम करना है, मुंह से तो मुंह से कृष्ण का कीर्तन गाते रहना चाहिए। और लिखते हैं कि पहले के समय में कोई भी जो बात होती थी उसको अगर लगातार उसका स्मरण करना है तो उसको गीत में ढाल देते थे, या तो कोई पेशेवर कवि होता था उससे ये करवा देते थे, या खुद भी लोग गीत में उसको ढाल देते थे और फिर उसको गाया जाता था। तो माता यशोदा ने भी जो कृष्ण की बाल लीलाएं थी, पूतना का वध किया, त्रिनावत का वध किया, चकटासुर का वध किया, ऐसी जो अनेक बाल लीलाएं की थी, उन बाल लीलाओं को गीत के रूप में बनाकर अब दई मत्ती हुई गा रही है। ये है तन से मन से और वाणी से क्या कर रही है, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए प्रयास कर रही है। तन शरीर दई मथरा है, किसके लिए, कृष्ण की संतुष्टि के लिए। वाणी कृष्ण का कीर्तन कर रही है, हैं? और मन में क्या है, मैं आज इतना बढ़िया दही मक्खन निकालूंगी और कृष्ण को खिलाऊंगी, वो पूरा संतुष्ट हो जाएगा, फिर दूसरों के घर नहीं जाएगा चोरी करने। तो हर उनका मनसा वांछा कर्मणा से कृष्ण को संतुष्ट करने का भी, इसलिए सुखदेव गोस्वामी भी इतने प्रसन्न है कि माता यशोदा के एक एक अंग का एक एक वस्त्र का वर्णन कर रहे हैं। तो जब माता यशोदा इस प्रकार कीर्तन करती हुई कृष्ण के लिए मक्खन निकालने में मग्न है, कीर्तन हो रहा है, और उसी समय उसके जो केश में माल के फूल लगे थे वे अब माथे से गिरने लगे, फूल नीचे गिर रहे हैं। कहाँ गिर रहे हैं? यशोदा के चरणों में। फूलों ने सोचा कि जो मनसा वाचा कर्मणा से कृष्ण को इस प्रकार संतुष्ट करना चाहते हैं, हम उनके सर में नहीं, हमारा स्थान तो उनके चरणों में है। इस प्रकार फूल माता यशोदा के सिर से चरणों में गिर रहे हैं। उधर रोज भोर में माता यशोदा कृष्ण को उठाकर अपना स्तनपान कराती थी, लेकिन आज नहीं करा रही तो कृष्ण जगे, देखा आज मैया नहीं आई, क्या बात है, तो वे ही स्वतः अपने खुद से नीचे उतर गए, और नीचे उतर कर वात्सल्य रस के भिखारी बनकर गए, चलते हुए ऐसा आंख मलते हुए ऐसा करते हुए गए, और जाकर देखा तो माता तो मंथन कर रही है। क्या कर रही है? उसने जाकर मंथानी को पकड़ लिया, बंद करो, जिसको कृष्ण मिल गए अब उसको क्या मंथन करना है, है? वेदवादी अध्ययनवादी लोग कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मंथन करते हैं, है ना, सारा शास्त्रों का ज्ञान का या जो भी आध्यात्मिक विषयों में मंथन है वो किसके लिए है? कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। लेकिन अब कृष्ण तुम्हारे घर में है, अब मैया क्या मंथन, बंद करो, पकड़ लिया मथन। जिनको कृष्ण मिल गए अभी उसको कोई मंथन करने की जरूरत नहीं, अब वो तो कृष्ण की सेवा में करें। इस प्रकार कृष्ण ने मंथानी को पकड़ लिया, तो माता यशोदा समझ गए कि लल्ला को दूध पिलाना है, उनके अस्तनों से भी दूध झर रहा था। तुरंत मंथन को बंद करके माता यशोदा अपनी गोद में कृष्ण को ले लिया, और कृष्ण के मुस्कुराते हुए मुख को देखने लगी, कृष्ण माता यशोदा के मुख को देखने लगे और उनका स्तनपान करने लगे। अब स्तनपान करते करते अचानक माता यशोदा ने देखा कि चूल्हे पर कृष्ण के लिए ही, कृष्ण के लिए कुछ विशेष गायें थी, हैं? उन विशेष गायों का दूध निकालकर कृष्ण के लिए ऐठा जाता था या गर्म करके पिलाया जाता है, उसका दही मक्खन निकाला जाता था। ये सारी गायें, अलग अलग बहुत गायों के नाम हैं, ये सारी गायें पद्मगंधा कहलाती थी। पद्मगंधा का अर्थ है इन विशेष गायों का दूध, पद्म का अर्थ होता है कमल, गंधा मतलब उनमें से एक कमल के गंध जैसी इनके दूध से सुगंध निकलती थी। ऐसे दूध को ऐठ कर उसमें से दही बनाया जाता था और उसमें से मक्खन निकाला जाता है, या उसी ऐसे ही दूध को कृष्ण को पिलाया जाता है। तो वो जो चूल्हे पर दूध रखा था कृष्ण के लिए ही, लेकिन वो उफनने लगा, उफन कर बाहर आकर वो सुसाइड करने लगा। दूध ने देखा कि अब कृष्ण तो अपने माँ का दूध पीकर तृप्त हो जाएंगे, क्योंकि माँ यशोदा के वक्ष में दूध का कोई कमी नहीं, वो तो दूध के सागर है, इतना कृष्ण प्रेम भरा हुआ है कि उनका दूध कभी, तो वो कृष्ण तो माता यशोदा का दूध पीकर संतुष्ट हो जाएंगे, फिर मैं यूं ही इस अग्नि पर जल रहा हूं तो इस जीवन को धारण करने से क्या फायदा। तो वो अब उस दूध के पात्र में उबल उबल कर नीचे गिर रहा, मतलब आत्महत्या कर रहा। इस पर आचार्य बहुत सुंदर सुंदर टीका लिखे, प्रत्येक व्यक्ति को या भक्त को कृष्ण सेवा का या कृष्ण भक्ति का जो अभाव है उसका अनुभूति होना चाहिए। कृष्ण के सेवा का या कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए जो हमारे जीवन में सेवा का अभाव हो जाता है, तो उसका अनुभूति या उसका विरह वेदना हमारे हृदय में होना चाहिए। हम इतना दिन से मंदिर नहीं जा पाए, हमारा ये मंदिर का सेवा है हम नहीं कर पाए, गिरधारी का मंदिर बन रहा है तो उसके लिए हम कुछ फंड नहीं दे पाए, यो जो भी हमारे से कृष्ण सेवा में अभाव होता है उसका अनुभूति कम से कम होना चाहिए, यह है भक्ति। ये कृष्ण के विरह में, विरह में करते हैं कृष्ण की सेवा से हम अगर अभाव में रहते हैं तो उसका अनुभूति, उसका वेदना होना चाहिए। यहां पर दूध सोच रहा है कि अरे कृष्ण का सेवा में मेरा जीवन नहीं जाएगा, अभाव रह जाएगा, तो भी मैं जीवन धारण करके क्या करूं। अर्थात ये मनुष्य जीवन का पर्पस जो है, उद्देश्य है कृष्ण को संतुष्ट करना, कृष्ण की सेवा में ये जीवन आ जाए तो ठीक है, नहीं तो इस जीवन को धारण करके क्या करेंगे है? तो इस प्रकार जब दूध गिर रहा था तो माता यशोदा ने तुरंत ही कृष्ण को अपनी गोद से नीचे उतार दिया। हालांकि अभी तक कृष्ण मां के दूध से संतुष्ट नहीं हुए थे, पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए थे, तो एक झटके में माता यशोदा ने, हालांकि कृष्ण चाहते थे दूध पीना, लेकिन माता यशोदा ने उस दूध को बचाने के लिए कृष्ण को अपनी गोद से नीचे उतार दिया। नीचे उतारते समय कृष्ण ने चाहा कि मैं गोद से ना उतरूं और माता के स्तन को और कड़ा पकड़ लिया और अपने पांवों को ठीक से पेट पे सटा लिया, बिल्कुल चिपक गए, नहीं मैं दूध पीना चाहता हूं, मैं अभी तृप्त नहीं हुआ हूं। लेकिन कृष्ण को माता यशोदा ने एक ही झटके में रख दिया। मुझे जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। गौर देखिए इस लीला में भी कृष्ण की शक्ति किस प्रकार पंगु नजर आती है माता यशोदा के सामने। एक आचार्य लिखते हैं कि पूतना में 1000 हाथियों का बल था और कृष्ण मात्र 6 दिन के उस समय, वो पूतना भी कृष्ण को अस्तन पिला रही थी, है ना? तो अस्तन जब पिला रही थी पूतना, तब कृष्ण ने उसके पूतना के अस्तन को पकड़ लिया और कृष्ण तो उसका अस्तन ही पी रहे थे, लेकिन कृष्ण के भीतर जो रोष था, क्रोध था, वो क्रोध पूतना का प्राण पीने लगा। जब प्राण पीने लगा तो पूतना को असह्य दुख होने लगा, असह्य ताप होने लगा, शरीर में वेदना होने लगी, तो वो तुरंत खड़ी हो गई, कृष्ण को छुड़ाना चाहती थी और खड़ी होकर घर के अंदर से बाहर आ गई आंगन में, और आंगन में आकर कहने लगी अरे छोड़ मुंच मुंच, अरे छोड़ रे, वेदना होने लगी। कृष्ण ने कड़ा पकड़ा, अब दूध पी रहे हैं लेकिन वो उनका जो रोष है, क्रोध है, वो उसका पीने लगा, तो प्राण जब शरीर से जाता है तो बहुत वेदना होती है, तो पूतना को असह्य वेदना होने लगी, तो वो छुड़ाने के लिए प्रयास करने लगी कृष्ण को। जैसे वो छुड़ाने को प्रयास कर रही है, कृष्ण और कड़ा से पकड़ रहे हैं, मैं पकड़ता हूं उसको, कोई नहीं छुड़ा सकता। तो वो कहती मुंच मुंच, अरे छोड़ रहे, अरे बाप रे कभी नहीं आऊंगी, ऐसा पता होता तो मैं आती नहीं, अरे बाप मार डाला, अरे मार मुंच ऐसा छुड़ाने लगी। कृष्ण और कड़ा पकड़ लिए और 1000 हाथियों का बल रखने वाली पूतना अपने को कृष्ण से नहीं छुड़ा पाई। जब वो अपना सारा ताकत लगा गई लेकिन कृष्ण उनको नहीं छुड़ा पाए, कृष्ण चिपके ही रहे, स्तन को पकड़े रहे और पेट में भी अपने पांव को बिल्कुल चिपके रहे। कृष्ण पूतना का कितना बड़ा अभी ओरिजिनल उसका रूप प्रदर्शित हो गया, पहले तो वो लक्ष्मी का रूप बनाकर आई है, हाथ में पद्म कमल को घुमाती हुई है आई अंदर। माता यशोदा और रोहिणी भी देख रही थी लेकिन देखा कि अरे ये तो साक्षात लक्ष्मी है और हमारे पुत्र को ले रही, तो हमारा सौभाग्य, इसलिए उसने नहीं रोका और ऐसा लल्ला से प्रेम दिखा रही थी, हाय लल्ला भूखा हुआ होगा, कितनी देर से सो रहा है, अरे तुमने दूध नहीं पिलाया, ऐसा नाटक ऐसा ड्रामा किया कि यशोदा और रोहिणी सोच रही थी तो हमारे से भी ज्यादा प्रेम करती है हमारे लल्ला को, तो वो नहीं रोकी, देख रही है गोद में लिया तो। लेकिन जब बाहर आ गई और जब कृष्ण ने उसको कृष्ण ने उसका प्राण पी लिया तो फिर तो वो तो असली अपने रूप में आ गए। कृष्ण के सामने कितना सिटिंग चलेगा, कृष्ण जब करेंगे तो उसका असली रूप बाहर आ ही जाएगा, तो वो असली रूप में तो महाकाय, भागवत में तो 12 कोस लंबी गिरी, जब गिरी तो 12 कोस लंबी, और उसके गिरने से धरती कंप जैसा आवाज हुआ, गिरी बाहर जाकर, वहां नहीं गिरी, वहां यशोदा के आंगन में गिरती तो कोई गाय या कोई बछड़ा या कोई आदमी है नीचे आ जाता, मर जाता ना, तो वो उसको बहुत दूर ले गए थोड़ा करके, और उस बगीचे में गिरी जिस बगीचे का फल कंस को जाता था, वो कंस का सारा फल निकाल के उस बगीचे में जाकर गिरी ताकि वे सारे वृक्ष थे वो सब चूर चूर हो गए, और गिरने के धमाके से या गिरने के वाइब्रेशन से आजू बाजू के वृक्ष भी गिर गए और चकनाचूर हो गए, वो बगीचा पूरा चौपट हो गया और पूतना गिरी उस पर। तो कहने का अर्थ ये है कि पूतना इतनी बड़ी और विशाल काय और इतनी शक्तिशाली थी, वो पूतना कृष्ण को नहीं छुड़ा पाई। 1000 हाथी का बल रखने वाली, इतनी सिद्धियां रखने वाली, हवा में उड़ने वाली, मन चाह रूप बनाने वाली, ऐसी सिद्धियों की स्वामिनी और इतनी शक्तिशाली वो पूतना 6 दिन के कृष्ण को अपने स्तन से छुड़ा नहीं पाई। हाँ, कृष्ण का शक्ति इतना है। लेकिन उसी कृष्ण को माता यशोदा ने एक झटके में नीचे रख दिया, वो छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन माता यशोदा ने, ये है प्रेम, भगवत प्रेम के आगे भगवान का शक्ति भी परास्त है। ये भगवान इतना यशोदा का जो प्रेम है उसके वशीभूत, वो शक्ति उनके सामने प्रदर्शित नहीं हो सकती। कृष्ण भले कर्म भी चाहे तो नहीं कर सकते। कृष्ण तो चाहते थे कि वो दूध पीना ना छोड़े, गोद में से न उठे, कड़ा पकड़ा था, लेकिन यशोदा का जो वात्सल्य प्रेम है उस प्रेम के आगे कृष्ण का शक्ति पंगु। तो इस प्रकार एक झटके में रखकर यशोदा चली गई उस दूध को लेने के लिए, और दूध से ले, मानो ये यशोदा का भाव है कि तुम दुख मत करो, मैं तुमको उठा लेती हूं। भक्त लिखते हैं कि महाभागवतों का, वैष्णवों का ये स्वभाव होता है कि वे हर वस्तु को और हर जीव को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहते हैं। माता ने देखा कि कृष्ण की सेवा का विरह देखकर ये दूध उफन कर बाहर आ रहा है, आग में गिर रहा है। तो माता यशोदा ने उनको कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए कृष्ण को रख कर उसके पास गई और उसको नीचे उतार दिया और पानी के थोड़े छींटे दिए ताकि वो बैठ गया। तो ये है भक्तों का स्वभाव, भागवतों का स्वभाव, कि वे हर जीव को, हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहते हैं। तो माता यशोदा ने इसलिए इस दूध को उतार दिया। अब उतार दिया, लेकिन इधर इधर तो कृष्ण है, बालक जो होते हैं, आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं जब संतुष्ट नहीं होते और माता किसी काम बस उनको गोद में से उतार देती है तो वो बहुत फिर उत्पात मचाते हैं। तो कृष्ण ने कहा कि अभी तक मैं संतुष्ट नहीं हुआ और एक छोटा सा दूध के लिए हमको छोड़कर चली गई, हम वैकुंठ छोड़कर यहां पर आए हैं वात्सल्य रस का स्वादन करने के लिए, वहां तो कोई हमको इस प्रकार स्तनपान करना नहीं पड़ता है, लेकिन हम वैकुंठ छोड़कर यहां आए हैं वात्सल्य रस के भिखारी बनकर आए और माता यशोदा ने हमको ऐसे ही छोड़कर चली गई एक दूध के लिए। तो कृष्ण बहुत क्रोधित हो गए, कुपित हो गए, क्या करूं क्या करूं, उठकर उनकी आंखें लाल लाल हो गई, वो चो होठ को चबाने लगे, काटने लगे, ऐसा क्या करूं। एक देखा पत्थर पड़ा था, उसको धीरे से वो जो दूध की मटकी, दही की मटकी थी, उसके जो माता यशोदा मथ रही थी उसी मटके के मारा और वो फूट गया, छेद हो गया। तो अब निकलने लगा मक्खन, अब मक्खन तो निकलने लगा, लेकिन अब वो तो फूट गई मटकी, तो फूट गई, तो अब क्या करें, अब भागो इधर से। तो भागे और भागे जाकर देखा तो घर के अंदर एक सीके में ताजा मक्खन रखा हुआ था। तो वो उखली पड़ा था, उखली के ऊपर चढ़ गए और चढ़कर उस मटकी में से फोड़कर मक्खन निकालने लगे और कौवा और बंदरों को खिलाने लगे, खुद भी खाने लगे। लेकिन माता यशोदा जब वो दूध उतार कर वापस आई, ये क्या, और माता यशोदा तुरंत समझ गई तो लल्ला कहाँ है। तो देखा तो वो दही जो निकला था और कृष्ण वहां से भागे तो उनके पांव दही में थोड़े हो गए थे, तो वो दही के पांव ऐसा ऐसा पड़े, तो वो देख के समझ गई, ओ ये हमारे लल्ला का ही करतूत है। तो ऐसे तो मुस्कुराई कि ओ हमारे लल्ले में अब ताकत आ गई कि वो मटका भी फोड़ सकता है पत्थर से। लेकिन देखा कि ये बहुत उत्पात मचाने लगा है, बहुत उन्दंड हो रहा है। इतने दिन तक तो बाहर के घरों में मटकी फोड़ता था, लेकिन अब ये घर में भी फोड़ने लगा, अब इसको सीधा करना पड़ेगा, अब क्या लगा है। तो माता यशोदा ने एक छड़ी पकड़ा छोटा सा, और छड़ी पकड़कर दबे पांव से धीरे धीरे, ऐसा पता ना चल जाए, देख लिया कि हाँ वो उखल के ऊपर है और मक्खन खिला रहा है, तो वो माता यशोदा पीछे से आ रही है और दबे पांव आ रही है, पता ना चले ऐसा जाके पकड़ना है उसको, दंड देना है। तो जैसे पीछे से आ रही थी और कृष्णा आगे कौआ और बंदरों को खिला रहे हैं, लेकिन कौओं और बंदरों ने देखा कि माता यशोदा के हाथ में छड़ी है, तो वो तो भाग गए। तो वो जब कौए उड़ गए और बंदर भाग गए तो कृष्णा समझ गए कोई आ रहा है, ओ वो उखली से कूदे। यशोदा भैया लुखलो धव मानम, लुखला उखल से कूदे और धव मानम, बहुत तेजी से दौड़ने लगे, तेजी से दौड़े। माता यशोदा पीछे सड़ी लेकर भाग रही है, आगे दौड़ रहे, माता यशोदा पीछे दौड़ रही। तो कृष्ण को पकड़ने की चेष्टा से कृष्ण भाग रहे हैं, माता यशोदा पीछे भाग रहे। एक भक्त कहता है माधव माधव मा मत धव धा, मत दौड़ मत दौड़, माधव माधव है। माधव का एक अर्थ ये भी होता है, धव का अर्थ है दौड़ना है, और मा मतलब मत। अरे क्यों माधव माधव, तो कहते हैं पीछे छड़ी लेकर आ रही है क्या माधव, अरे गिर जाओगे इस प्रकार दौड़ते हो, गिर जाना ठीक है छड़ी पड़ा तो और कर, लेकिन माधव तो धव धव है दौड़ रहे हैं माता। और आखिर में द्वितीय गोप्या कैसे है वो द्वितीय नहीं प्रामष्ट मत्यंतो द्वितीय गो प्रामष्ट, ये शब्द इसे भागवतम में भी आया है प्रामष्ट, और ये सत्यव्रत मुनि ने भी दामोदर अष्टकम में लिखा प्रामष्ट मत्यंतो द्वितीय गोप्या। प्रामष्ट का अर्थ है प्रामष्ट द्वितीय, तो प्रामष्ट द्वितीय तो मतलब परामष्ट, कृष्ण से भी तेज दौड़कर, कृष्ण जो भाग रहे थे उससे भी तेज भाग गए। प्रामष्ट मत्यंत द्वितीय, उसने अपनी ही कृष्ण से भी ज्यादा गति को बढ़ाया और कृष्ण से तेज भागकर कृष्ण को पकड़ लिया। बहुत सुंदर टीका है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो बड़े बड़े योगी जन हैं कृष्ण का ध्यान करते हैं लेकिन वो ध्यान में भी पकड़ नहीं पाते, साक्षात पकड़ना बात छोड़िए ध्यान में भी पकड़ में नहीं आते, उनको कोई नहीं पकड़ सकता, वे अजीत हैं, उनको जीतना बड़ा कठिन है। काल यवन आया था, काल यवन को शिव जी का वरदान था कि इसको रण के मैदान में कोई नहीं हरा सकता, तो कृष्ण को चुनौती दिया आकर, तो कृष्ण ने कहा कि अरे युद्ध करेंगे तुम्हारी सेना मरेगी मेरी सेना मरेगी क्या फायदा है, हमको कोई देश तो जीतना है नहीं, तो ऐसा करो तुम जीतना चाहते हो मेरे को, मैं भागता हूं तुम पकड़ लो। तो उसने कहा ओ ये छोटा सा बच्चा चल मैं पकड़, तो तुम मैं भागता हूं तुम पकड़ लिया, तुम जीत गया मैं हार गया चलो। तो कृष्ण भागे और वो महान योद्धा जिसको रण के मैदान में कोई नहीं जीत सकता था, इतना शक्तिशाली वो योद्धा था काल यवन, महान पराक्रमी वो था है, वो पूरे पृथ्वी पर उसको रण मैदान में हराने वाला कोई नहीं था, तो वो ऐसे हरिणाक्ष के जैसा ऐसा बहुत उदंड पर घूम रहा था। नारद जी मिले, नारद जी ने कहा क्या बात है, अरे हमको कोई हमारा मुकाबला करने वाला कोई नहीं, भुजाओं में खुजली आ रहा है हमको मिटाने वाला। तो बोला मथुरा चले जाओ, बलराम और कृष्ण हैं वो ही तुम्हारे एक जोड़ी के हैं, तुम्हारा खुजली मिटा देंगे। तो गया, हमारा खुजली मिटा देगा, अरे हमको कौन हरा सकता। तो आया था वो, तब कृष्ण ने कहा कि मैं दौड़ता हूं तुम पकड़ो। तो कृष्ण मात्र चार अंगुल का दूरी रखते थे ताकि उसको यह भाव उसका उत्साह बना रहे है ना, जैसे हम लोगों का माया में लोगों का कितना उत्साह बना रहता है, कितना परिश्रम करते हैं, बस उतना काम एक हो जाए तो बेड़ा पार है, लेकिन वो चार अंगुल दूरी रहता है, बेड़ा पार होता ही नहीं है। लेकिन वो माया इतना दूरी इसलिए बनाए रखती है कि आदमी दौड़ता रहे, जैसे वो इसको ने एक चित्र बनाया है ना, एक गधा बनाया है और उसके गले में एक लकड़ी बांधा और आगे एक वो गाजर बांध दिया है, गाजर चार अंगुल दूर रखा है, वो गधा सोचता है थोड़ा जाऊंगा तो मिल जाएगा थोड़ा सा, वो तुम जाता है तो वो और आगे जाता है। ऐसे भगवान की माया भी ऐसी है, हमारा लड़का बस ये पास हो जाए तो फिर तो लंदन चला जाएगा, फिर हमको कोई नहीं, लड़का लंदन गया और वो पिताजी इधर बाल्टियां उठा रहे हैं, वो लड़का तो गया लंदन, अब तुम बाल्टी उठाओ, बाथरूम में जाने के लिए बाल्टी, पानी नहीं आया तो नीचे से बाल्टी भर के जा रहे हैं, अरे तुम्हारा लड़का, लड़का तो लंदन गया तो बाल्टी तुमको उठाना पड़ेगा, क्या करें। वो सोच रहे थे ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा माया का था, माया उतना ही दूरी रखती है ताकि वो भागता रहे सुख के लिए, सुख है नहीं और हम भागते हैं, तो नहीं नहीं थोड़ा मेरा ये काम हो जाए फिर तो बस, फिर तो मैं रोज मंदिर आऊंगा, फिर जप चालू कर दूंगा, वो काम होता नहीं और वो आता नहीं, इसलिए किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, तुरंत चालू कर देना चाहिए। ये माया हमको चार अंगुल दूर रखेगी, जो कृष्ण से हम बहुत दूर हो जाएंगे। तो कृष्ण इतना ही दूरी रखते थे कि उसको उत्साह बना रखे, पकड़ लिया पकड़ लिया, ऐसे करा करा कर लेकर गए वो मुचकुंद महाराज की गुफा में, बिचारों को जला कर भस्म कर दिया। कृष्ण हरि अद्भुत कर्मणा, कृष्ण की कर्म तो बहुत अद्भुत है, किस आइडिया से ये लीला किया है भगवान ने है? उधर जरासंध भी आक्रमण करने वाला है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर आया है, ये दोनों एक साथ करने वाले थे आक्रमण। जरासंध ने सोचा कि कालीवन के साथ ये युद्ध करेगा तो दूसरी तरफ से मैं मथुरा पर आक्रमण कर दूंगा, तो मुझे आशीर्वाद मिला है ब्राह्मणों का, इस बार निश्चित मेरी विजय निश्चित है, तो यहाँ मथुरा पर वो आक्रमण करने वाला है और ब्राह्मणों का आशीर्वाद है तो उसको भी सत्य करना है, इधर काल यवन को शिव जी का वचन मिला हुआ है तो उसको भी अक्षत रखना है, उधर मुचकुंद महाराज को देवताओं का वरदान मिला है तो उसको भी सफल करना है। तो भगवान ने एक लीला में सबके वरदान सफल कर दिए, ये है कृष्ण चरित अद्भुतम, अद्भुत चरित्र है कृष्ण का, एक रण छोड़कर भागे इसमें, लेकिन कितने ही भक्तों के आशीर्वाद, कितने ही भक्तों के वचन, देवताओं के वचन, सबको सिद्ध कर दिया, सबको अक्षत कर दिया, ये है भगवान का अद्भुत कर्म। तो कहने का अर्थ है कि वो काल यवन कृष्ण को पकड़ नहीं पाया, उस गुफा तक गए लेकिन नहीं पाया, इतना शक्तिशाली योद्धा और ये बड़े बड़े योगी सिद्ध पुरुष कृष्ण को पकड़ना चाहते पकड़ नहीं पाते हैं, जिनके भय से साक्षात काल भी भयभीत रहता है, यमराज भी भयभीत हैं, लेकिन वे माता यशोदा की छड़ी से, माता यशोदा के भय से भयभीत होकर भाग रहे थे, और जिनको बड़े बड़े योगी जन, बड़े बड़े योद्धा नहीं पकड़ पाते, उनको माता यशोदा ने कृष्ण से भी तेज दौड़कर पकड़ लिया। प्रामष्ट मत्यंतो द्वितीय गोप्य, यहां पर एक आचार्य ने लिखा है कि अगर आप कृष्ण को पकड़ना चाहते हैं या कृष्ण को वशीभूत करना चाहते हैं, हैं जैसा इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, हैं भर्त्य वश्यताम अहम भक्त पराधीनो, लेकिन वो कैसे भक्तों के पराधीन हैं, तुम कैसे कृष्ण को वश में कर सकते हो, पकड़ सकते हो, तो कहते हैं कि जैसे कृष्ण तेज दौड़ रहे थे लेकिन यशोदा उनसे भी तेज दौड़ी और पकड़ लिया। इसका अर्थ है कि जितना कृष्ण आपसे प्रेम करते हैं उससे ज्यादा अगर आप कृष्ण से प्रेम करते हो तो कृष्ण को पकड़ सकते हो, तो कृष्ण को वशीभूत कर सकते हो। हमको उससे भी ज्यादा प्रेम करना है कृष्ण, तो इस प्रकार कृष्ण को पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद ऐसे ये लीला तो दो तीन घंटे चलने जैसा है, लेकिन मैं तो काट रहा हूं बीच में से, कई आचार्यों के मत हैं, आप हर बार इस लीला को सुनते कुछ ना कुछ नया अंदर से है, इसी को रस कहते हैं। रस किसको कहते हैं, अरे ये तो पहले है, जैसे आज सिंगार दर्शन आज किया दर्शन, लेकिन कल फिर करेंगे तो ये नया कृष्ण लग रहा है, इसको रस कहें। जितनी बार भगवान की लीला सुनते वो नया नया लगता है। तो इस प्रकार पकड़ लिया, पकड़ कर माता यशोदा ने निश्चय कर लिया कि अब मैं इसको बांध दूंगी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तत् वीर्यम कोविदा, यशोदा ने यह संकल्प किया कि मैं उसको बांध लूंगी, तत् वीर्यम कोविदा, भगवान की शक्ति से अनभिज्ञ है, वो भगवान अजीत हैं जिनको कोई नहीं बांध सकता, कोई नहीं जीत सकता, उनको बांधने का संकल्प कर रही है ऐसी यशोदा जो कृष्ण की शक्ति से अनभिज्ञ है। कृष्ण को, कृष्ण की शक्ति का ज्ञान नहीं है यशोदा को, कृष्ण के ऐश्वर्य का ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि व्रज है ऐश्वर्य और ज्ञान विहीन भक्ति है, मात्र प्रेम करना जानते हैं वो, कृष्ण से प्रेम करते हैं वो। ये नहीं मानते कि ये भगवान है, हैं? ये इतना बड़ा शक्तिशाली है, वो नहीं, ये मेरा पुत्र। तो सुखदेव को तत् वीर्यम कोविदा, उनकी शक्ति को जाने बिना ही, उनकी शक्ति के ज्ञान विहीन या उनके ऐश्वर्य विहीन माता यशोदा ने उनको बांधने का संकल्प किया। क्यों बांधने का संकल्प किया? तीन कारण देते हैं। पहला कारण ये कि अब ये डर गया है, और हो सकता है कि मैं ना बांधूं, मैं घर के काम में लगूं और ये भाग जाएगा। ये भाग रहा है तो अब भाग जाएगा ये तो, और जंगल में भाग गया तो ये घर से भाग ना जाए, इसलिए इसको बांध के रखिए। अभी ये भागने मूड में है तो इसको बांध देती हूं, एक कारण। दूसरा कारण, इसको बांध दूं ताकि ये अपने सखाओं के साथ खेलने भी ना जा सके। हाँ, उसको ये कमी होना चाहिए कि मैं अभी बहुत उदंड मचा रहा हूं तो बांध देगी तो मैं खेल भी नहीं पा रहा हूं, तो अपने सखाओं के साथ खेलने भी ना जा सके, इसलिए इसको बांध देती हूं। और तीसरा कारण था कि माता यशोदा ने सोचा कि अब ये बहुत उदंड हो रहा है, ये बहुत नटखट हो रहा है। मैं इतने दिन से सुन रही थी गोपियों से कि ये उनके घर में उत्पात करता है, मटके फोड़ता है, लेकिन अब ये इसका उत्पात ही बहुत बढ़ रहा है, इसका आंतक अब बढ़ रहा है, ये कहीं आंतकवादी न बने, तो इसको अभी से नियंत्रण में करना, इसको अभी से दंड देना चाहिए इसको सुधारने के लिए। और इस प्रकार इन तीन कारणों का विचार करके माता यशोदा ने उनको बांधने का संकल्प किया। तो अब उखल था, उस उखल को एक डोरी, या कोई कोई भक्त कहते हैं कि अपने कमर में रेशमी डोरी जो बांधा हुआ था उसको ही खोल के बांधने लगे। तो कृष्ण की कमर जो है 12 अंगुल है, ऐसा था उस समय, 12 अंगुल की कमर थी। उस 12 अंगुल कमर को बांधने के लिए छोटा सा टुकड़ा चाहिए, और लेकर बांधने लगी। तो जब बांधकर छीरे पे लाया तो छीरे पे आकर 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तो यशोदा ने कहा अपनी दासियों से कि दूसरा रस्सी का टुकड़ा लाओ, तो घर में से दूसरा टुकड़ा लाया, वो उसको गांठ मारा और फिर लेकर ऐसा किया तो वो फिर 2 अंगुल छोटी पड़ गई। यहां माता यशोदा तो मूड में बांधना ही है इसको, बस है? एक वार्निंग दे दिया, मैराथन ये क्या, मैं इसको बांध ही दूंगी, ला दूसरा टुकड़ा, और घर में से रस्सी लाई। वो बांधती गई, और जब वहां आती है बांधने के, दोनों छीरे मिलाने की बात आती है तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है, घर की सारी रस्सियां खत्म हो गई। अड़ोस पड़ोस से मंगाई तो वो भी कहने लगा अभी नहीं है हमारे घर में भी, और सब गोपियां भी ऊपर से दीवार के ऊपर से आंगन से देख रही है ये नाटक क्या हो रहा है। तो वो तो यशोदा इस प्रकार कर रही है, पसीना पसीना हो रहा है, लेकिन अभी तो संकल्प कर लिया ना, तो दूसरी गोपियां हैं वो हंस रही हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्या नाटक है, लेकिन वो बस इसका मजा ले रही हैं। इति दक्ष लीला वीरानंद कुंडे स्वघोष निमजंत मख्यापयन। इति दक्ष लीला, इस प्रकार की लीलाएं करके अपने भक्तजनों को, गोपियों को, गोपों को, सबको आनंद के समुद्र में डुबा रहे हैं, सब आनंद ले रहे हैं, ये क्या 2 अंगुल छोटा पड़ रहा है, इतना सारा छोटा ही पड़ता जा रहा है, बस वो इस लीला का आनंद ले रहे हैं और विचार नहीं कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सब हंस रहे हैं बस। और देखते हैं ना, 2 कोई लड़ते हैं तो कौन जीतता है, देखते हैं और आनंद लेते हैं दूसरे लोग लड़ने दो। तो इस प्रकार वो गोपियां माता यशोदा और कृष्ण की लड़ाई, इसमें वो लोग आनंद ले रहे हैं, इसी को कहते हैं सत्यव्रत मुनि इति दक्ष लीला भीरा। और भी लीला है, बहुत लीला है, लेकिन अभी उस लीला का तो वर्णन है। कृष्ण बहुत लीला करके ब्रजवासियों को आनंद में डुबोते थे। तो 2 अंगुल छोटी पड़ गई, अब सारी रस्सियां खत्म हो गई, माता यशोदा को पसीना आ गया। अब रस्सी ना 1 अंगुल छोटी हो रही है, ना 3 अंगुल छोटी हो रही है, कितनी छोटी हो रही है, 2 अंगुल, ना 3 ना 1। अद्भुत बात है ना, कुछ बात है इसमें। नहीं तो इतनी सारी रस्सियां लाओ तो कभी एक अंगुल भाई चलो थोड़ा तो बढ़ना चाहिए ना, एक अंगुल ना तीन अंगुल, दो अंगुल ही छोटी पड़ रही है। बहुत सुंदर सिद्धांत यहां पर हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि दो अंगुल छोटी पड़ने का कारण है कि भगवान यह बता रहे हैं कि सामने वाले का परिश्रम, हमारा परिश्रम, हमारी सेवा, हमारा साधन, श्रम, भगवान को प्राप्त करने के लिए हमारा जो प्रयास है वो प्रयास पूरा पूरा होना चाहिए, ढचू पचू नहीं। आज 16 तो कल 10 तो परमो 8 तो एक दिन खूंटी पे ही टंगा रह जाता है, ऐसा नहीं। किसी किसी भक्त को पूछते हैं कितना माला करते हो, जितना होता, क्या जितना होता, कितना, कभी एक कभी दो कभी नहीं। अरे प्रभु जी ऐसा नहीं, हमारा प्रयास, इधर से प्रयास पूरा पूरा होना चाहिए। तो जब हम प्रयास पूरा पूरा करते हैं तब उधर से कृपा होती है, वो एक अंगुल वो है, एक अंगुल ये है, एक अंगुल हमारी तरफ से, हमारा प्रयास पूरा होना चाहिए, हमारी साधना, हमारा सेवा, हमारा भगवान के प्रति समर्पण, प्रेम, ये पूरा पूरा होना चाहिए, मेहनत पूरा होना चाहिए, प्रयास पूरा होना चाहिए। जब हम पूरा पूरा प्रयास करते हैं तो उधर से कृपा होती है। कुछ लोग बिल्कुल बेढंगा बोलते हैं, कहते माला कर उनका कृपा होगा तब करेंगे, मंदिर आओ उनका कृपा होगा तब आएंगे, भक्ति करो हम उनका कृपा होगा। क्या उनका कृपा होगा, तुम कुछ करोगे तब उनका कृपा होगा, उल्टा बोल रहे हैं आप लोग। वो सोचते हैं भगवान का कृपा होगा तब करेंगे, तब सिद्धांत यह है कि आप करेंगे तब भगवान का कृपा होगा, बात यह है। यहां से माता यशोदा प्रयास कर रही है, प्रयास कर रही है, प्रयास कर रही है, उधर से जब वो कृपा करेंगे, अब कृपा करेंगे उधर से, तो यहां से साधक का प्रयास, श्रम और उधर से भगवान की कृपा, ये है दो अंगुल। कई कई संप्रदायों में इस सिद्धांत में भिन्न भिन्न मत है, जैसे रामानुज संप्रदाय, तो उसमें एक सिद्धांत बताते हैं, मरकट सिद्धांत और मंजन का ऐसा सिद्धांत है। मरकट कहते हैं बंदर को और मंजन कहते हैं बिल्ली को, ये सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। इस सिद्धांत में क्या है कि बिल्ली जो होती है तो बिल्ली का जो बच्चा होता है वो कुछ भी चेष्टा नहीं करता है, वो उसके माँ पर आश्रित रहता है, माँ उसको उठाती है, मुंह में लेती है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, तो उसमें बच्चा कुछ नहीं करता। आप देखने का कम अवसर मिलता है लेकिन ये देखें, बच्चा जब छोटा होता है तो बच्चा कुछ नहीं करता है, माँ उठाती है और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, तो उसको पकड़े रहने, उसकी सुरक्षा का पूरा जवाबदारी बिल्ली के ऊपर, माँ के ऊपर रहता है, बच्चा कुछ नहीं करता। इसको मलकट मल न्याय कहते हैं, और दूसरा है मरकट न्याय, मरकट बंदर को कहते हैं। बंदर का जो बच्चा होता है उसमें क्या होता है, मां कुछ नहीं करती, बंदर का बच्चा प्रयास करता है, आपने देखा है ना, मां एक डाली से दूसरी डाली पे जाती है तो बच्चा को ध्यान नहीं देती है, क्या बच्चा को पकड़ती है नहीं, बच्चा उसको पकड़े रहता है ना, मां कुछ नहीं करती है। तो ये एक प्रकार का सिद्धांत है इस लीला में, कि एक तरफ साधक ऐसे होते हैं जो भगवान की कृपा पर ही आश्रित, वो कुछ नहीं करते हैं। कुछ संप्रदायों में ऐसा मत है कि भगवान की कृपा होगी तब, वो कुछ नहीं करते हैं। ये है बिल्ली जैसा न्याय, और कुछ कुछ में ऐसा न्याय है कि नहीं हमको ही करना है, भगवान कुछ नहीं करेंगे, हमको ही करना है, तो वो बिल्ली बंदर के बच्चे जैसा न्याय है। लेकिन गौड़ीय वैष्णव धारा में ऐसा बात नहीं, हमारे अंदर कैसा है कि साधक को प्रयास करना है, श्रम करना है और उधर से कृपा होगा, ये वास्तव में सिद्धांत ठीक है। जैसे उदाहरण देते हैं, कोई कुएं में गिर रहा है, डूब रहा है, तो डूब रहा है तो वो चिल्लाता है बचाओ बचाओ बचाओ, तो चिल्लाता है तो बाहर से कोई देखता है, हाँ वो पुकार रहा है बचाने के लिए, चिल्ला रहा है, तो बाहर से कोई रस्सी डालता है, तो रस्सी डालता है तो रस्सी को उसको पकड़ना पड़ता है, तो वो रस्सी पकड़ता है तो वो ऊपर से खींचता है तो वो बाहर निकल आता है ना। लेकिन कोई कहे चिल्लाए ना, डूबे ना, तो चिल्लाना ये हमारा प्रयास है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये चिल्लाना हमारा प्रयास है। और रस्सी को पकड़ना ये साधना, साधक ये साधन है, भगवान की सेवा में रहना। और ये भी कहना तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्ध च, देखिए भगवान बताते हैं क्या, माम अनुस्मरण युद्ध च, इसका अर्थ है मेरा स्मरण भी करना है, जप भी करना है और सेवा भी करना है। प्रभु जी हैं? कथा में भी बैठना है, नींद भी करना है, ये अर्थ नहीं है, है? कोई आरती कर रहा है और नींद करे हाथ में जैसे मर गिर जाए, क्या क्या होगा उसका, है? कोई ड्राइविंग करे और उसका जबकि गाय किधर जाएगा, गाड़ी गिरेगा खड्डे में कि अपने गंतव्य को जाएगा, नहीं जाएगा ना? ये नींद, नींद मतलब सोना, सोना और सोना, ये हमारे भक्ति में बहुत बड़ा बाधक है, ये सोना और सोना, समझ रहे हैं आप, एक सोना सोना और एक सोना गोल्ड, ये दो बहुत बड़ा बाधक है भक्ति में, सावधान रहना चाहिए, सोना और सोना दोनों एक ही है। तो हाँ, मैं सिद्धांत के बारे में, तो जब कुएं में रस्सी डाला है तो जो वो चिल्ला रहा है वो उसका प्रयास है और जो पकड़ता है वो उसका साधन है। हाँ, माम अनुस्मरण युद्ध च, आपका स्मरण भी करना और सेवा भी करना, दोनों कार्य करना चाहिए, नाम जप भी करना, भगवान को पुकारना भी है और भगवान की सेवा भी करना। तो रस्सी, वो चिल्लाया तो रस्सी डाला, हम नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा हमको सेवा में लगाओ, हमारी सेवा में लगाओ, तो भगवान सेवा देते हैं, जाओ मंदिर बन रहा है लाओ डोनेशन, तो सेवा भी करना चाहिए। तो ये है साधक, जो प्रयास भी करता है सेवा भी करता है, तब उधर से कृपा होती है। कृपा क्या है? रस्सी, वो भगवान कृपा किया, डाला रस्सी पकड़ो, तो भगवान की कृपा जब पकड़ते हैं निकल जाते हैं, संसार सागर से पार हो जाते हैं। तो दो अंगुल मतलब, एक तरफ से साधक का प्रयास और दूसरी ओर से भगवान की कृपा, जब ये दोनों मिलते हैं तब हम कृष्ण को बांध सकते हैं, तब कृष्ण बंधन में आते हैं, तब कृष्ण वशीभूत होते हैं। तो इस प्रकार दो अंगुल जब देखा, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दृष्ट्वा स्वमातु श्रमम, ये मैं शब्द अलग अलग से ले रहा हूं, पूरा श्लोक नहीं है, दृष्ट्वा स्वमातु अपने माता का प्रिय श्रमम, कृष्ण ने जब देखा कि हमारी मैया हमको बांधने के लिए इतना श्रम कर रही है, क्यों बांध रही है, क्यों बांधना चाहती है, हमारे हित के लिए। माता यशोदा कृष्ण को क्यों बांधना चाहती है? कृष्ण के हित के लिए, ये आगे जाकर बिगड़ ना जाए। हैं? कोई भी बच्चा होता है, माता पिता उसको डांटते हैं, कुछ बदमाशी चोरी करके आता है तो डांटते हैं या तमाचा मारते हैं, तो वो बच्चे के हित के लिए मारते हैं, ऐसा नहीं कि हम मजा ले रहे हैं, नहीं, माता या कोई पिता बच्चे को डांटता है, गुरु या मारता है, तो वो कभी कभी कोई गुरु या बांध भी देते हैं ना बच्चों को, अब तो ये बंद हो गया, पहले तो हम तो छोटे थे तो बांध देते थे, और एक वो लकड़ी देते हैं क्या, उदाम लकड़ी, ऐसा पांव में लकड़ी, हाथ में लकड़ी और हाथ ऐसा बांध देते हैं, वो उकले खाते जाओ, कोई छुड़ाएगा तो नहीं, तो उसको क्या कहते हैं वो बचपन में, वो या मुर्गा भी बना देते हैं, मुर्गा बनो, मुर्गा में तो खुल सकता है, लेकिन वो जो लकड़ी डालते हैं ना, अभी तो आज के जमाने के बच्चों को मालूम भी नहीं कि वो लकड़ी में कैसे बांधा जाता है, वो फिर पोट का जैसा हो जाता है, लुटको, कोई दूसरा आके जुड़ाएगा तो नहीं, तो वो लकड़ी लगता है। लेकिन ये सब दंड देते हैं माता पिता बच्चे के हित के लिए। तो कृष्ण ने सोचा कि हमारी माँ बहुत श्रम कर रही है, क्यों श्रम कर रही है, हमारे हित के लिए, ये माता हमको दूध पिलाती है, मेरे लिए मक्खन निकाल रही थी, मुझको अच्छा मक्खन खिलाना चाहती है, मेरे लिए परिश्रम कर रही है, मेरे हित के लिए। इस प्रकार माता का परिश्रम देखकर भगवान की कृपा शक्ति उदित हुई, जिनके सामने उनका जो बल है वो क्षीण हो गया। भगवान की कृपा शक्ति के सामने उनका जो ऐश्वर्य है शिथिल पड़ गया, या माता यशोदा के प्रेम के आगे भगवान का जो शक्ति ऐश्वर्य है वो शिथिल हो गया। ये भगवान की लीला शक्ति कृपा शक्ति उदित हुई, और कृपा शक्ति जब उदित हुई तो माता यशोदा के प्रेम के कारण वो माता यशोदा से नहीं लेकिन माता यशोदा के प्रेम की डोरी में बंध गई। जिस सारे जगत को अपने माया की डोरी से बांध के रखा है, ये सारा जगत जो है उसको भगवान ने अपनी माया की डोरी से बांध के रखा है, वो कृष्ण माता यशोदा के प्रेम की डोरी से बंधे। प्रभुपाद जी ने लिखा तात्पर्य है कि वो किसी व्यक्ति से नहीं बंधे हैं, डोरी से नहीं बंधे हैं, वे माता यशोदा के प्रेम से बंधे हैं। भगवान किसी के वश में नहीं है, वो पूर्णतः स्वतंत्र है। स्वराट जन्मा दश्य जो श्लोक है भागवतम का पहले उसमें कहा स्वराट, वो स्वराट हैं। और ब्रह्मा शिव इंद्र जैसे देवताओं को अपने वश में रखते हैं, सारा ब्रह्मांड सारा लोक उनके वश में है, लेकिन वे प्रभु अपने भक्तों के प्रेम के वश में हो जाते हैं। जो अजीत हैं लेकिन जो प्रेम उनसे करते हैं, जो प्रेम भक्ति में जो लगे हुए उनके द्वारा वे वशीभूत हो जाते हैं। और इस लीला द्वारा जो सुखदेव गोस्वामी कहते संदर्शिना, इस लीला द्वारा भगवान ने यह दिखाया। किसको दिखाया? निराकारवादियों को नहीं, वो निराकारवादी क्या समझ सकते हैं इस लीला को, अभक्त भी नहीं। ऐसे साधक जो ध्यान योग ज्ञान योग या वैदिक अनुष्ठान में लगे हुए हैं, या ऐसे भक्त हैं जो ऐश्वर्य युक्त भक्ति करते हैं, भगवान जय जगदीश हरे, एक ऐश्वर्य भाव होता है, ऐश्वर्य और ज्ञान युक्त भक्ति, ऐसे भक्तों को भी भगवान ने दिखाया कि देखो हमसे जो प्रेम भक्ति करते हैं वे मुझे वशीभूत कर देते हैं। ऐश्वर्य युक्त भक्ति करने वाले भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं, वशीभूत नहीं कर पाते, लेकिन प्रेम भक्ति जो करने वाले हैं, अनन्य भक्ति जो करते हैं, वे भगवान को वशीभूत कर लेते हैं। तो दर्शिता भर्त्य वश्यताम, वे भगवान किस प्रकार अपने भक्तों के वश्य में है, वश में है, अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्त के अधीन हूं, ये भगवान ने इस लीला द्वारा सबको बताया, भक्तों को भी, कि देखो प्रेम भक्ति के द्वारा मुझको कोई भी बांध सकता है। और इससे भगवान भी बहुत आनंद लेते हैं। यहां पर प्रभुपाद जी ने लिखा कि सारा जगत कृष्ण को समर्पण करता है, यहां पर देखा जाता है कि कृष्ण ने यशोदा को समर्पण किया है, उल्टा विरोधाभास लगता है, बंध गए समर्पण, कृष्ण का यशोदा के प्रति समर्पण है, ये लीला में दिखाया। तो इस प्रकार कृष्ण बांध दिए गए, जब बंध गए तो माता यशोदा बांध कर भीतर चली गई, और अब रुदंतम मोहु नेत्रम, अब रोने रो रहे हैं खड़े खड़े, क्यों रो रहे हैं, अब छोड़े कौन, बांध दिया अब छोड़े कौन, जो सारे जगत को मुक्ति देने वाले हैं वो अपनी मुक्ति के लिए रो रहे हैं, जो उनकी शरण लेता है, जो उनका एक बार नाम उच्चारण करता है उसको मुक्त कर देते हैं, और वे खुद अपनी मुक्ति के लिए रो रहे हैं। अद्भुत लीला कृष्ण, अद्भुत कर्मणा, अद्भुत कर्म, अद्भुत लीला है, बहुत अद्भुत लीला है। इसका एक एक आप प्रसंग, किसी को अगर आप बांधते हैं घर में, या आपने किसी ने देखा होगा बांधते हुए, किसी को बांधा जाता है पांव से या हाथ से, या ज्यादा ज्यादा गले से बांध देते, किसी को पेट से बांधा हुआ देखा है, लेकिन यहां पर पेट से बांधा, दाम उधर, दाम मतलब डोरी, उधर मतलब पेट, ये अद्भुत लीला है। माता यशोदा ने पेट से बांधा, क्या लीला है, अद्भुत है। इस प्रकार जब बंदे बंदे खड़े हैं रो रहे हैं, अब उनको कोई है? माता यशोदा काम में लग गई, उधर उनके सखा देख रहे हैं, गोप सखा सब देख रहे हैं, और इतने में बलराम जी कहीं बाहर गए थे तो आए, बलराम जी ने देखा, बलराम जी जब कृष्ण पर कुछ ऐसा देखते हैं तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। ये कई लीलाओं में आप बलराम जी की सभी लीलाओं में देखिए, चाहे वे लक्ष्मण बनकर आए हो या बलराम बनकर आए हो, लक्ष्मण बनकर आए राम के प्रति अगर कोई देखते हैं दशरथ ने कहा वनवास जाओ तो बोलो दशरथ को मार दूंगा, ऐसा बोले, गाली बोलने लगे। जनक महाराज बोले सीता स्वयंवर में, राम बैठे थे और जनक महाराज बोल गए, अगर मुझको ऐसा पता होता कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है तो मैं भूल कर भी ऐसी प्रतिज्ञा ना करता कि धनुष तोड़ेगा, कोई वीर रहा ही नहीं और राम बैठे। लक्ष्मण जी सहन नहीं हुआ, जनक संभाल कर बोलो कौन बैठे हैं यह मालूम है, मैं तो इनका एक अंश हूं, ये मुझको आदेश करें तो इस ब्रह्मांड को मैं कच्चे घड़े की तरह फोड़ सकता हूं, तुम क्या बोल रहे हो, मैं तो उनका सेवक हूं एक अंश हूं, अगर ये आदेश करें तो मैं इस ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूं, तुम बोलते हो वीरों से पृथ्वी खाली होगी और ये पृथ्वी पर विराजमान है। लक्ष्मण जी सैन्य बहुत बोले, लक्ष्मण जी तुम जानते हो शक्ति को, मैं इनका एक अंश हूं, इस ब्रह्मांड को हाथ में, धनुष की बात छोड़ो धनुष अंदर है, मैं इस ब्रह्मांड को हाथ में लेकर 100 योजन दौड़ जाऊं अगर ये बोले तो, और ऐसे बैठे और तुम बोल रहे हो पृथ्वी वीरों से खाली होगी, जनक संभाल कर बोलो। खड़े हो गए, उनको शांत किया राम, बैठ जाओ भाई कहां बोल रहे हो ऐसा, तो लक्ष्मी तो यहां पर भी आएगा, कृष्ण को किसने बांधा, बोल कौन बांधने वाला, जानता है ये कौन है, माता देखा बाहर कुछ हल्ला हो रहा है, यशोदा बाहर आई, कौन है, मैं हूं, किसने बांधा है, यशोदा ने क्यों, अरे किसने बांधा है, जानती हो ये कौन है, जानती हो मैं कौन हूं, मैं साक्षात शेष नारायण हूं, शेष नाग हूं, मैं अनंत शेष हूं, और ये हिरण्यकश्यपु का वध करने आए थे वो स्वयं नरसिंह देव हैं, वामन अवतार में आकर इन्होंने 2 कदम में सारा ब्रह्मांड नाप लिया, राम अवतार में आकर इन्होंने रावण जैसे शक्तिशाली का वध किया, उसको किसने बांधा, माता यशोदा ने कहा, और तुम, मैं इनका ही अंश शेष नारायण शेष हूं, अनंत शेष हूं, शेष नाम, माता ने उठाया छड़ी, सारे अवतार मेरे ही आंगन में आ गए, शेष और वामन और नारायण और सब मेरे ही आ जाते, रहे को भी बलराम जी भाग रहे थे तो माता ने बांधा है, भाग गए। अब जब बलराम जी नहीं छुड़ा पा रहे हैं तो दूसरे गोप सखा, क्योंकि यशोदा माता तो महारानी है ना, जब अपने सरदार को दंड दे दिया तो बेचारे बच्चे तो क्या कर सकते हैं, गोप दूसरे वो चाहते हैं लेकिन क्या करें, अब माता यशोदा जब हमारे सरदार को मार सकती है तो हमारा तो चूर है, हमको तो पीट डालेगी, सब मानते हैं कृष्ण तो हमारे हीरो हैं, तो हमारे हीरो को ही भी ऐसा कर दिया है तो फिर हम तो क्या कर सकते हैं, अब वो दूर खड़े खड़े देख रहे हैं, जब बलराम जी के साथ ऐसा था तो वो तो और दूर खड़े, क्या कौन मान। लेकिन एक आचार्य लिखते हैं कि गोप सखा इसलिए नहीं छुड़ा पाए क्योंकि साख्य रस से वात्सल्य रस ऊंचा है, सिद्धांत ये, वे साख्य रस इधर वात्सल्य रस से बांधे गए हैं तो वात्सल्य रस के बंधन को साख्य रस के भक्त नहीं छुड़ा सकते, नहीं छोड़ सकते, आखिर में उनको नंद महाराज ने छुड़ाया क्योंकि नंद महाराज भी वात्सल्य रस में है, अंत में नंद महाराज ने छुड़ाया, छुड़ाया जब उनको याद आया अपने भक्त नारद का श्राप याद आया, अब वो तो सब भाग गए, सखा भी दूर खड़े हैं, अभी क्या करें सब देख रहे हैं, बाद में आए बलराम जी तो आए थे, वापस आए, देखा कि माता अंदर चली गई तो वापस आए, कृष्ण से कहा मैंने तुमको 100 बार का मटका बटका मत फोड़ा कर, तो फोड़ता रहता अब बस खड़ा रहे, अभी क्या करूं, मैं अभी नहीं छुड़ाऊं, मैं नहीं छुड़ा बस, माता मेरे को भी मारेगी, मटका मत फोड़ फोड़ता ही रहता इस प्रकार, अब क्या करें, सब देख रहे हैं कोतक, जितने में तो भगवान को याद आया कि हमारे भक्त नारद जी ने हैं इन यमला अर्जुन वृक्षों को आशीर्वाद श्राप दिया था और साथ साथ में आशीर्वाद दिया था कि द्वापर युग में कृष्ण आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे, तो मेरे भक्त नारद के उस वचन को सत्यम विभाषित निजभृत्य भाषितम, अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए वो उखल से बंधे बंधे भगवान बंधे हुए हैं, खुद चले, किसको? दूसरों को मुक्त करने के लिए। ये है भगवान का शक्ति। हमारा हाथ किसी ने पीछे बांध दिया है तो हम किसी को कोई आगे हमको छोड़ क्या छुड़ा सकता है? खुद बंधन में दूसरों को कैसे छुड़ा सकता है? लेकिन कृष्ण अद्भुत कर्मणा, खुद बंधे हुए हैं। और वो जो नलकुवर और मणिग्रीव थे, हैं, नारद जी के श्रापद वृक्ष में, वृक्ष रूप में थे यमला अर्जुन के, तो वो खुद बंधे हुए थे लेकिन उनको मुक्त कर दिया। ये है कृष्ण, ये है भगवान। तो वो कैसे मुक्त किया? दोनों धार के बीच में से निकले और पीछे उखुल जो है वो घसीट रहा, घसीटते घसीटते निकले। एक बार हमारे भक्त हैं सार्वभौम प्रभु, आप सब जानते हैं सार्वभौम, वो बता रहे थे कि एक भक्त था, कम सुनता था, तो गुरु ने दीक्षा दिया तो उसको कहा कि सीताराम सीताराम बोलो। वो बेचारा समझा नहीं तो वो जप करने लगा घसीटाराम घसीटाराम। तो एक व्यक्ति ने सुना कि अरे ये तुम क्या बोल रहा है? बोला मेरे गुरु ने दिया है। क्या? घसीटाराम घसीटाराम। अरे घसीटाराम नहीं, दूसरा होगा, नहीं यही है। क्योंकि गुरु आए, गुरु को पूछा अरे ये तो क्या मंत्र जप कर रहा है, ये तो घसीटाराम घसीटाराम बोल रहा है। तो बोला ठीक है, वो भी वो उखल को घसीटते घसीटते चला था ना, इसलिए उसका नाम एक घसीटाराम भी है, कर दे दो कर। तो उखल को घसीटते हुए घसीटते हुए दोनों वृक्षों के बीच में से निकले, कृष्णा निकल गए, लेकिन जो वो उखल था वो उल्टा हो गया और वो अटक गया। तो कृष्ण ने थोड़ा जोर लगाया तो वो दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर गए। और उसमें से दो देव पुरुष, बहुत ही सुंदर अलंकृत मुकुट वाले वे देवता प्रकट हुए। ये कुबेर जी के पुत्र थे, हैं, कुबेर जी रावण का भाई है, उनकी सौतली माँ का पुत्र था, केकसी का, केकसी और इड़गिड़ा, ये दो पत्नियां थी विश्रवा के। तो एक केकसी के, इड़गिड़ा के, एक कुबेर जी पुत्र हैं एक पत्नी के, और एक के रावण, और ये चार भाई, तीन भाई और एक बहन। तो ये भी विश्रवा के पुत्र हैं, कुबेर जी रावण के भाई हैं। और इसी के, कुबेर जी के ऊपर ही उलाना दिया था केकसी ने, रावण की माँ ने, कि तू खाता पीता रहता, देख इसने कितनी तपस्या की, देवताओं का कुबेर बना हुआ कोषाध्यक्ष है, और देख इसके पास पुष्पक विमान है, तू खा पी के पड़ा रहता है। तो रावण ने देखा मैं ऐसी तपस्या करूंगा कि इसका पद, देवताओं का पद और इसका विमान सब ले लूंगा, और ऐसा संकल्प करके रावण तपस्या करने गया। वो पुष्पक विमान भी ले लिया और कुबेर जी का, सब देवताओं को भी ले लिया, ऐसा तपस्या किया। इन कुबेर जी के पुत्र हैं नल नल कुंवर और मणिग्रीव। तो इनका उद्धार किया, इसमें भी बहुत सिद्धांत जानने जैसा है। देखिए कुछ लोगों के मन में भ्रम है, दूर हो जाना चाहिए। दो वृक्ष हैं और उखल अटका है और वो डोरी है, डोरी कृष्ण से लगी हुई है उखुल। तो कुछ भक्त बताते हैं कि ये उखुल है वो गुरु है, वृक्ष हम लोग हैं, और जो डोरी है वो परंपरा है। जो परंपरा, जो गुरु, उखुल गुरु है, ध्यान दीजिए, डोरी परंपरा है, जो गुरु परंपरा कृष्ण तक गई, अगर उस गुरु परंपरा के संपर्क में कोई है तो वो झाड़ जैसा है तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। इसलिए संप्रदाय से शिक्षा लेना चाहिए। वो परंपरा जो कृष्ण से आती है, वो उखुल मतलब गुरु जिसका परंपरा कृष्ण तक जाता है, अगर उधर कोई व्यक्ति आया कैसा भी झाड़ जैसा भी और उस गुरु के संपर्क में आ गया तो उसका उद्धार निश्चित है। इस प्रकार भगवान, क्योंकि वो उखल का डोरी कृष्ण तक था, कृष्ण ने थोड़ा खींचा, दोनों गिरे और उनका उद्धार कर दिया। तो बहुत समय हो गया इसलिए हम इस लीला को यहीं विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और दामोदर लीला, आप प्रतिदिन आइए, दीपदान कीजिए भगवान को, भगवान की इस लीला का स्मरण कीजिए और अपनी भक्ति को बढ़ाइए, भगवान के प्रति प्रेम को बढ़ाइए। जय श्री श्री राधा दामोदर भगवान की। दामोदर लीला की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, कार्तिक मास की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की। सभी के लिए एक विशेष सूचना है, 14 तारीख को यहाँ पर गोवर्धन पूजा है, अन्नकूट उत्सव। तो उसमें सभी भक्तों से निवेदन है कि सभी भक्त अपने अपने घर से गिरिराज जी को भोग लगाने के लिए भोग बनाकर ला सकते हैं। सभी भक्त ला सकते हैं, जितने भी हैं, जितने नहीं आए उनको भी बताइए, और अपने घर से गिरिराज जी को भोग लगाने के लिए भोग बनाकर ला सकते हैं। लेकिन कृपा करके सूखा भोग ला, कोई गीला वस्तु मत लाइए, इतना ध्यान रखिए, और शुद्धता से बनाकर आप लाइए, उसको गिरिराज जी को भोग लगाया जाएगा। तो 14 तारीख को समय पर प्रातः प्रातः आप लाकर दे दीजिए, हैं 8, 9, 10 बजे के पहले पहले, तो आपका वो भोग लगाया जाएगा और सबको ये गिरिराज का कृपा प्राप्त होगा। हरे कृष्ण महाप्रसादे। बोलिए आप।
गोविंदे आमुगामने वैष्णवे कल्प पुण्यवतन राजन